कारोबार करते हुए इस मुल्क में दो लोग हैं जिनसे आपका ताल्लुक पड़ता है, एक आपके मुलाजमी और दूसरा गवर्नमेंट जिसको आपने टैक्स देना होता है। अगर गवर्नमेंट के मामला देख लिए जाएं तो पिछले 4-5 साल में जब मैंने कारोबार किया तो 15 से 16 अदारे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से आपके पास आते हैं और आपको मजबूर करते हैं रिश्वत देने पर, एक बात। दूसरा, जो टैक्स का निजाम है वो भी ज्यादातर क्योंकि सेल टैक्स जैसे लग जाता है, लगा दिया जाता है कि आपके टर्नओवर पे लगा दिया जाता है चाहे आपने कमाया या नहीं कमाया। ये भी इस वजह से है कि यहां पे लोग खुद से टैक्स नहीं देते। तो एक तो इस मामले में जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा ही दिए हैं और जो अदारे रिश्वत लेने पर आपको मजबूर देने पर मजबूर कर ही देते हैं, वहां पर कहां तक आप रुक सकते हैं?
जी जावेद साहब, टैक्स के मामला जो गवर्नमेंट ने टैक्स नाफिज कर ही दिया है और जो रिश्वत देने पे ये मजबूर हो जाते हैं, तो इसमें कहां तक क्या लिमिट है, कैसे इसको हैंडल किया जाए?
ये बात ये है कि ये फैसला इंसानी जमीर को करना होता है। आप एक हुकूमत में रह रहे हैं, जाहिर है जब आप हुकूमत में रह रहे हैं तो इससे कतई नजर कि हुकूमत को टैक्स कितना लेना चाहिए, उसका क्या हक है, उस हक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, उन्होंने ये हक दिया भी है या नहीं दिया, वो एक अलग इल्मी बहस है। लेकिन जब आप किसी मुल्क में रह रहे हैं और उससे आप अमन और दूसरी ज़रूरी सहूलतें हासिल कर रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी दयानतदारी से आप टैक्स अदा कर सकते हैं अदा करें, क्योंकि ये दरहकीकत आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो वजूद में आ जाता है।
ठीक है,
अच्छा, ये अलग बहस है। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका कि मेरे नज़दीक तो अल्लाह ताला ने हुकूमतों के हाथ से ये जबर का हथियार छीन लिया हुआ है। उसने खुद मुकर्रर कर दिया है कि हुकूमतों को अपनी आमदनी के ये ज़राए इख्तियार करने चाहिए, और वो इसीलिए किया है कि आपके कमाए हुए माल को हुरमत हासिल है। यानी इसमें जब तक अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त ना हो, आप किसी के माल के खिलाफ इकदाम नहीं कर सकते। तो टैक्स में भी हकीकत में हुकूमत आपके कमाए हुए माल से अपना हिस्सा लेने के लिए आती है। ये हिस्सा कितना होना चाहिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मैं मुकर्रर करूँगा। हमें दुनिया भर को ये बताना चाहिए कि वो कितनी गैर मामूली चीज़ है, अल्लाह ताला ने ये मुदाखलत करके इंसानियत पर कितना बड़ा एहसान किया है, इससे मईशत के अंदर क्या इस्तेहकाम पैदा होता है, इसमें सोसाइटी कैसे शरीक होती है, इसमें टैक्स का नेट कितना बढ़ जाता है, वो बिल्कुल एक अलग मौजू है। लेकिन इस वक्त ना हुक्मरान उसको सुनने के लिए तैयार है, ना उलमा उसको मानने के लिए तैयार है, ना इस वक्त आम आदमियों को वो समझाना आसान है। आप एक मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के शहरी की हैसियत से आप चूंकि उसकी सहूलतों से फायदा उठा रहे हैं, हुकूमत कायम की है ना आपने, तो अमन आपको फराहम किया जा रहा है, पुलिस आपकी खिदमत कर रही है, दूसरे इदारे कर रहे हैं, आपको दयानतदारी के साथ इस हक को अदा करना चाहिए मुमकिन हद तक। जहां पे ये पता चल जाए कि आप बेबस हो रहे हैं और उसमें कोई शख्स आपको नाजायज तंग कर रहा है, आप उससे कोई सहूलत नहीं ले रहे बल्कि नाजायज तंग करने की वजह से आपको कोई पैसा देना पड़ रहा है, तो इसको अल्लाह ताला माफ फरमाएगा, इस पर कोई मुआखजा नहीं होगा। लेकिन ये फैसला आपको अपने जमीर की गवाही पर करना चाहिए, यानी ये कोई अलल इतलाक फैसला नहीं है कि मैं सुना दूं और आप बरी हो जाएं। नहीं, आपको देखना है कि कहां से आप किसी बदयानती का इर्तकाब कर रहे हैं और कहां जाके अब आप मजबूरी की सरहद में दाखिल हो गए हैं। मजबूरी के उसूल को बयान किया जा सकता है, मजबूरी है या नहीं इसका इतलाक फर्द ने खुद करना होता है और इसके लिए वो अपने रब के सामने जवाब दे।
अच्छा, इसी को अगर मैं हां और ना में लेना चाहूं, इसका मतलब है कि जो टैक्स उन्होंने आपके टर्नओवर पे लगा दिया है चाहे आपने कमाया, तो वो आपको देना है, मतलब वो गलत है या सही है वो बहस तो अब नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर हां और ना में मैं लेना चाहूं,
नहीं, तो वो गलत है, हाँ, कोई शुबा ही नहीं है, लेकिन आपको देना है इसलिए कि आप एक मुल्क में रह रहे हैं। अगर आप नहीं देंगे तो आपको बहुत सी अखलाकी खराबियों में मुब्तला होना पड़ेगा, आप झूठ बोलेंगे, आप बदयानती करेंगे, आप धोखा देंगे और बेशुमार किस्म की बुराइयां, इंसान जब उनमें पड़ जाता है तो फिर उसके बाद हर चीज। लेकिन आपने जो बात फरमाई है और बहुत से लोग कहते हैं, यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई नादिर बात कह दी है, हमारे मुल्क में हर दूसरा आदमी ये कहानी सुना रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, ये अब ऐसा नहीं हम कह सकते कि है नहीं, लोगों के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, उनको दोहरे खाते रखने पर मजबूर किया जाता है, महकमे उनके साथ इसी तरह की नाइंसाफियां करते हैं, बाज़ मौकों के ऊपर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता कारोबार बचाने के लिए, वो रिश्वत दें, ये मजबूरियां हमारे इल्म में हैं। लेकिन अब ये मजबूरी किसी को पेश आ गई है, इसका फैसला कोई फकीह, कोई आलिम या बाहर बैठा हुआ आदमी नहीं कर सकता। हम ये उसूल बता सकते हैं जो कुरान मजीद में बयान हुआ है कि जब आपको इस दर्जे मजबूर कर दिया जाए, और आप देखिए ना कि बदकारी करने के लिए जिन औरतों को मजबूर किया जाता था तो फरमाया कि अगर दिल से तुम पाक दामनी का इरादा रखती हो, इन अरदना तहस्सुना फ़इन्नल्लाह मिन बाद इकराहिन्न लगफूरुर रहीम, اللہ پھر معاف کرنے والا ہے. تو اضطرار میں، پریشانی میں، مجبوری میں اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے اس طرح کی در اندازی کے مقابلے میں آپ بعض اوقات لٹیگیشن میں چلے جائیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ کاروبار بند ہو جاتا ہے. پھر بڑی بڑے مسائل ہیں، ان مسائل میں آپ واقعی گر گئے ہیں تو اس کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا. اس کا فیصلہ ہر شخص کو خود کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، کسی کا حق کھانا، اب چونکہ حکومت کا ہم نے یہ حق مان لیا ہے، یعنی اصول کے لحاظ سے نہیں مانا، عملاً تو مان لیا نا، ہم یہاں رہ رہے ہیں. اگر ہم حق نہ مانیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے نزدیک غلط ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی ایک قیمت آج دینی پڑتی ہے نا، آپ دینے سے انکار کر دیں، جیل میں چلے جائیں. دوسرا راستہ یہ ہے، تو اس میں پھر آدمی نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ فیصلہ اس کو کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ مجبوری کے عالم میں کوئی چیز کرتا ہے تو اس مجبوری کا عذر اس کو خدا کے حضور میں بھی پیش کرنا ہوگا. اگر وہ وہاں اپنا عذر پیش کر سکتا ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہے، تو امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا.